एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। आज हम दर्शन की एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प धारा पर बात करने वाले हैं।
हाँ, जिसे कॉन्टिनेंटल फिलोसफी कहते हैं।
और इसे समझने के लिए हम मदद ले रहे हैं जाने माने दार्शनिक सिमोन क्रिचली की किताबों से। खास तौर पर उनकी एक किताब है कॉन्टिनेंटल फिलोसफी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन,
और उसी से जुड़ा एक और डिटेल सोर्स है हमारे पास।
बिल्कुल। और देखिए, ये विषय सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में ही इसकी बात हो।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आज की जो जिंदगी है ना, भागदौड़ वाली, कई बार लगता है कि हम अकेले हैं या समझ नहीं आ रहा किधर जाएं, चीजों का मतलब क्या है।
हाँ, वो खालीपन सा।
एग्जैक्टली। तो ये जो दर्शन है, ये कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है इन चीजों के बारे में।
सही कहा। ऐसा लगता है ना कि जैसे जानकारी मतलब नॉलेज तो बढ़ गई है खूब सारी, दुनिया भर की खबरें पता हैं, लेकिन जिंदगी जीनी कैसे है, क्या सही है, क्या जरूरी है, वो समझ जिसे शायद विवेक कहते हैं,
हाँ, वो विजडम वाली बात।
वो कहीं कम होती जा रही है। तो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी एक तरह से इसी इसी गैप को, इसी खाई को भरने की कोशिश है।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिमोन क्रिचली की ही, जिनके नजरिए से हम इसे समझ रहे हैं। कौन है ये और इनकी बात में ऐसा क्या खास है?
सिमोन क्रिचली,
हाँ,
वो एक जाने माने अंग्रेज दार्शनिक हैं और आजकल न्यूयॉर्क में पढ़ाते हैं। एक बहुत ही फेमस जगह है, द न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च।
अच्छा, वो तो बहुत बड़ा नाम है, खासकर कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी के लिए।
बिल्कुल, वो उसका एक बड़ा सेंटर माना जाता है।
और क्रिचली की खासियत क्या है, मतलब क्यों सुने हमें?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि वो हैं तो बहुत गहरे अकादमिक विचारक, मतलब सीरियस फिलोसोफर हैं, लेकिन उनमें ये कमाल का हुनर है कि वो बहुत मुश्किल, बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी एकदम साफ, सरल भाषा में समझा देते हैं।
अच्छा, मतलब बोरिंग नहीं बनाते?
बिल्कुल नहीं, बल्कि कई बार तो थोड़े मजाकिया अंदाज में भी बात करते हैं। वो इन विचारों को आम लोगों तक पहुंचा पाते हैं।
ये तो बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर फिलॉसफी का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं।
हाँ, और वो सिर्फ ये नहीं बताते कि पहले क्या हुआ था, मतलब इतिहास नहीं सुनाते सिर्फ,
तो
वो ये समझाते हैं कि ये पुराने विचार आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, क्यों मायने रखते हैं। वो उन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
सही।
मतलब वो मानते हैं कि फिलॉसफी सिर्फ सोचने की चीज नहीं है,
बल्कि जीने का तरीका भी है।
बिल्कुल,
एक तरह का एंगेजमेंट है दुनिया के साथ।
तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी आखिर है क्या भला? ये क्या इसका मतलब है कि ये सिर्फ यूरोप के महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट का दर्शन है?
नहीं, ये नाम थोड़ा सा कह सकते हैं कि मिसलीडिंग है, धोखा दे सकता है।
अच्छा।
हाँ, ये दरअसल पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी की ही एक बहुत बड़ी धारा है, जो मुख्य रूप से कह लीजिए 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस और जर्मनी में ज्यादा फली फूली।
ओके।
और इसकी जो स्टाइल है, इसके जो सवाल हैं, इसकी जो चिंताएं हैं, वो थोड़ी अलग हैं उस दर्शन से जो ब्रिटेन और अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर रहा।
जैसे एनालिटिक फिलॉसफी कहते हैं।
हाँ बिल्कुल। एनालिटिक फिलॉसफी का जोर ज्यादातर तर्क पर, भाषा की एकदम क्लैरिटी पर और साइंस पर रहता है।
और कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी का?
ये ज्यादा जुड़ी हुई है इतिहास से, राजनीति से, साहित्य, कला और सबसे जरूरी, इंसान के अपने तजुर्बे से, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से।
जैसे?
जैसे उसके दुख, उसके सुख, उसकी आजादी की इच्छा, उसके डर, इन सब चीजों से।
तो क्रिचली इसे सिर्फ कुछ सिद्धांतों की लिस्ट की तरह नहीं देखते हैं?
तो फिर कैसे देखते हैं? वो इसे देखते हैं एक रिएक्शन की तरह, आधुनिक युग में जो संकट आए उनकी प्रतिक्रिया।
संकट? कैसे संकट की बात कर रहे हैं हम?
वही जो हमने शुरू में कहा था कि देखो, ज्ञान तो बहुत बढ़ गया।
हाँ।
साइंस ने कमाल की तरक्की कर ली।
हाँ।
पर क्या हम ज्यादा खुश हुए, ज्यादा आजाद महसूस करते हैं? जीने की समझ बढ़ी क्या? और जब पुराने सहारे जैसे धर्म या परंपराएं वो कमजोर पड़ने लगे,
तो फिर जिंदगी में मतलब कहां से ढूंढे, अर्थ कहां से आए?
एग्जैक्टली। ये दर्शन इन्हीं बड़े सवालों से जूझता है।
अच्छा, तो ये सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि सवाल पूछता है।
हाँ, और क्रिचली कहते हैं कि इसका जो कोर मकसद है वो सिर्फ दुनिया को समझना नहीं है, बल्कि उसकी आलोचना करना, क्रिटिक करना,
और
उसे बदलने के लिए सोचना, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये सिर्फ सोचने यानी थियोरिया के बारे में उतना नहीं है
जितना करने यानी प्रैक्सिस के बारे में है।
बिल्कुल। दुनिया में एक्टिव होना, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये कोई एक थियोरी नहीं है, बल्कि दो सदियों से चली आ रही एक तरह की लगातार बातचीत, एक डिबेट है।
चलिए तो इस बातचीत में थोड़ा और गहरे चलते हैं। इसकी शुरुआत मतलब जड़ें कहाँ तक जाती हैं इसकी?
क्रिचली इसकी जड़ें ले जाते हैं 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट तक।
कांट, हाँ, उनका नाम तो सुना है।
कांट ने एक बहुत बड़ी, एक तरह से क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखो, विज्ञान यानी साइंस हमें ये तो बता सकता है कि दुनिया कैसे काम करती है ना, मतलब फैक्ट्स, नॉलेज।
हाँ,
लेकिन साइंस ये नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी नैतिकता क्या हो, हमारे मूल्य क्या हो।
अच्छा, तो ज्ञान और नैतिकता ये अलग अलग है?
कांट के हिसाब से हाँ, इनके पीछे खाई है। और कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी इसी खाई को भरने की कोशिश से शुरू होती है। वो सवाल पूछती है, ठीक है, दुनिया ऐसी है तो अब हमें क्या करना चाहिए, वॉट इज टू बी डन।
तो कांट ने वो सवाल खड़ा किया और फिर उसके बाद हेगल का नाम बहुत आता है इसमें।
हाँ, कांट के ठीक बाद आते हैं हेगल, 19वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत में। और हेगल ने भाई एक बहुत ही बड़ा, बहुत एम्बिशियस सिस्टम बनाया फिलॉसफी का।
क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि इतिहास जो है वो ऐसे ही ऊटपटांग घटनाओं का सिलसिला नहीं है।
हाँ,
इसका एक तर्क है, एक लॉजिक है, एक मकसद है
मकसद।
इतिहास का।
हाँ,
ये एक तरह से मानव चेतना की, जिसे वो गाइस्ट कहते हैं, मतलब आत्मा या स्पिरिट, उसकी खुद को समझने और पूरी तरह से स्वतंत्र होने की एक लंबी यात्रा है।
और ये यात्रा होती कैसे है?
ये होती है द्वंद्ववाद से, डायलेक्टिक से, मतलब विचारों का टकराव होता है। एक विचार आता है थीसिस, उसका विरोध होता है एंटीथीसिस, और फिर दोनों के मिलने से एक नया बेहतर विचार बनता है, सिंथेसिस, और ये प्रोसेस चलता रहता है।
उनका वो मास्टर स्लेव वाला उदाहरण भी काफी मशहूर है ना?
हाँ बिल्कुल, वो स्वामीदास का जो द्वंद्व है वो दिखाता है कि कैसे हमारी पहचान, हमारी सेल्फ अवेयरनेस और हमारी आज़ादी वो अकेले में नहीं मिलती, वो दूसरों के साथ संघर्ष करने से और दूसरों से पहचान मिलने, रिकग्निशन से बनती है।
ये तो काफी गहरा आइडिया है। लेकिन क्या सब लोग हेगल की इस ग्रैंड पिक्चर से सहमत थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हेगल के बाद दो मेन रास्ते निकले कह सकते हैं।
कौन कौन से?
एक तरफ थे कार्ल मार्क्स जैसे विचारक। मार्क्स ने कहा, भाई हेगल तो सिर के बल खड़े हैं, उल्टी बात करें।
मतलब?
मार्क्स ने कहा कि इतिहास को आइडियाज या चेतना नहीं चलाती, इतिहास को चलाती है जमीनी हकीकत, मटीरियल कंडीशंस।
जैसे कि
अर्थव्यवस्था, चीजें बनाने के तरीके, प्रोडक्शन, और सबसे बढ़कर समाज में जो वर्गों का संघर्ष है, अमीर गरीब का, मालिक मजदूर का, ये चीजें इतिहास को ड्राइव करती हैं।
मार्क्स का सबसे जरूरी विचार कौन सा माना जाता है?
उनका वो अलगाव का सिद्धांत, एलियनेशन, वो बहुत ही पावरफुल है।
एलियनेशन मतलब अकेलापन।
हाँ, पर उससे ज्यादा मार्क्स ने बताया कि कैसे पूंजीवादी सिस्टम में, कैपिटलिज्म में, इंसान अपने काम से कट जाता है। जो चीज वो बना रहा है उससे उसका कोई लगाव नहीं रहता। वो खुद अपने आप से भी कट जाता है, अपनी क्रिएटिविटी से, और दूसरे इंसानों से भी उसका रिश्ता सिर्फ लेन देन का रह जाता है। वो पराया महसूस करता है हर चीज से।
ये तो आज भी महसूस होता है कई बार ऑफिस में काम करते हुए, है ना? जैसे हम बस एक मशीन के पुर्जे हैं।
बिल्कुल, मार्क्स ने यही कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि फिलॉसफी का काम सिर्फ दुनिया की व्याख्या करना, उसे एक्सप्लेन करना नहीं है।
तो क्या है?
उसे बदलना है। द पॉइंट इज टू चेंज इट।
ओके, तो ये तो हुई एक धारा सामाजिक आर्थिक आलोचना वाले, और दूसरी तरफ कौन थे जो हेगल से अलग सोच रहे थे?
दूसरी तरफ थे नीचे और किरकेगार्ड जैसे लोग। इन्होंने हेगल के उस बड़े भारी भरकम सिस्टम को नकार दिया।
और किस पर जोर दिया?
उन्होंने जोर दिया व्यक्ति पर, इंडिविजुअल पर, उसके अपने निजी अनुभव पर, उसकी फीलिंग्स पर, उसकी तकलीफों पर, उसके डर पर, उसकी आस्था पर, और सबसे जरूरी उसके चुनाव पर, उसकी चॉइस पर।
नीचे का नाम तो बहुत सुना है, काफी विवादास्पद भी रहे हैं वो।
हाँ, नीचे ने तो भाई पारंपरिक नैतिकता पर, धर्म पर, यहाँ तक कि पुराने दर्शन पर भी जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सब कमजोरों के बनाए हुए बंधन है।
और उनका वो ईश्वर के मृत्यु वाला कथन, गॉड इज डेड।
हाँ, उसका मतलब ये नहीं था कि सचमुच कोई भगवान मर गया। उसका मतलब था कि अब वो पुरानी मान्यताएं, वो पुराने सहारे जो हमें रास्ता दिखाते थे, वो अब काम नहीं करेंगे, वो ताकत खो चुके हैं।
तो फिर क्या करें?
नीचे ने कहा, अब हमें अपने मूल्य खुद बनाने होंगे, अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करनी होगी, भेड़ चाल छोड़कर अपना रास्ता खुद बनाना होगा, एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा जिम्मेदार इंसान बनना होगा।
ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये लोग व्यक्ति की आजादी और अपने जीवन का मतलब खुद बनाने पर जोर दे रहे थे।
बिल्कुल, और यहीं से वो जमीन तैयार होती है जिसे हम अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं।
हाँ, सार्त्रे का नाम आता है फिर।
हाँ, जॉन पॉल सार्त्र ने इसे 20वीं सदी में बहुत पॉपुलर बनाया। उनका वो फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस,
मतलब
अस्तित्व सार से पहले आता है।
मतलब ये कि हम पहले दुनिया में बस आ जाते हैं, हमारा अस्तित्व होता है, हमारा कोई पहले से तयशुदा स्वभाव, कोई सार, कोई एसेंस, कोई डेस्टिनी नहीं होती।
तो फिर हम क्या हैं?
हम वो हैं जो हम अपने आप को बनाते हैं, अपनी पसंद से, अपने कामों से, अपने चुनावों से। हम पूरी तरह से आज़ाद हैं चुनने के लिए,
और इसीलिए हम अपने जीवन के मतलब के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भी हैं।
ये तो मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो बहुत भारी लगती है।
हाँ, सार्थ कहते भी हैं कि हम चुनने के लिए अभिशप्त हैं, कंडेम्ड टू बी फ्री, कोई बहाना नहीं चलेगा।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, क्या चुन रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई अस्तित्ववाद की बात। 20वीं सदी में और कौन से बड़े विचार आए? मिशेल फूको का जिक्र भी बहुत होता है।
हाँ, मिशेल फूको 20वीं सदी के दूसरे हिस्से के बहुत ही प्रभावशाली विचारक थे। वो उन्होंने पावर यानी ताकत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
कैसे?
उन्होंने कहा कि ताकत सिर्फ ऊपर से नहीं आती, मतलब सिर्फ सरकार या पुलिस या राजा के पास नहीं होती। ताकत तो समाज के रेशे रेशे में फैली हुई है,
हर जगह।
हाँ, और ये अकेली नहीं होती, ये हमेशा ज्ञान नॉलेज के साथ मिलकर काम करती है, जिसे वो कहते हैं शक्ति ज्ञान।
पावर नॉलेज, ये क्या चीज है?
इसका मतलब है कि ताकत तय करती है कि किस चीज को ज्ञान माना जाएगा, क्या सच है, क्या नॉर्मल है, और फिर ये ज्ञान उस ताकत को बनाए रखने में मदद करता है।
उदाहरण दे सकते?
जैसे सोचिए, स्कूल में या अस्पताल में, वहां के नियम, वहां की बातें, वहां का ज्ञान हमें बताता है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होता है या एक स्वस्थ मरीज कैसा होता है। और इसी तरह वो हमें कंट्रोल करते हैं, हमें एक खास तरीके से ढालते हैं।
अच्छा, मतलब जिन चीजों को हम बिल्कुल नॉर्मल या ऑब्जेक्टिव मानते हैं, वो असल में हमें कंट्रोल करने के तरीके हो सकते हैं।
जी, फूको का इशारा इसी तरफ है। जेल, स्कूल, अस्पताल, दफ्तर, यहां तक कि परिवार, हर जगह ये शक्ति ज्ञान का खेल चल रहा है जो हमारी पहचान करता है।
ये तो काफी डिस्टर्बिंग आइडिया है। और फिर डेरिडा भी थे, उनका क्या था?
हाँ, जैक्स डेरिडा, उन्होंने दिया विखंडन का तरीका, डीकंस्ट्रक्शन।
डीकंस्ट्रक्शन मतलब तोड़ना।
हाँ, एक तरह से, पर सिर्फ तोड़ना नहीं, डेरिडा ने दिखाया कि भाषा जो है वो कभी भी सीधी साधी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। हर टेक्स्ट, हर बात, चाहे वो लिखी हो या बोली गई हो, उसके अंदर छुपे हुए मतलब होते हैं, विरोधाभास होते हैं, ऐसी मान्यताएं होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते।
तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें बहुत ध्यान से पढ़ना और सुनना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, किस बात पे जोर दिया जा रहा है, किसे किनारे किया जा रहा है। भाषा सिर्फ दुनिया का आईना नहीं है,
वो दुनिया बनाती भी है।
बिल्कुल, वो हमारी सोच को, हमारी हकीकत को शेप देती है।
वाह, कांत से लेकर डेरिडा तक, ये तो विचारों की एक बहुत ही लंबी और काफी उलझी हुई सी यात्रा लगती है। अगर हम क्रिचली के नजरिए से देखें तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं?
हाँ, क्रिचली इन सब अलग अलग, कभी कभी एक दूसरे से लड़ने वाले, से लगने वाले धागों को जोड़कर कुछ बहुत जरूरी संदेश निकालते हैं।
जैसे कि पहला?
पहला तो वही जो हमने बार बार कहा कि कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी सिर्फ दिमागी कसरत, कोई एकेडमिक गेम नहीं है, ये आलोचना और परिवर्तन का एक टूल है, एक हथियार है।
एक्शन पर जोर है, प्रैक्सिस पर।
बिल्कुल, दुनिया को सिर्फ समझो मत, उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करो भी।
ओके, दूसरा पॉइंट?
दूसरा, ये आज की जिंदगी के जो संकट हैं, मतलब कि कमी महसूस होना, अकेलापन लगना, पुरानी मान्यताओं का टूट जाना, उनसे सीधे सीधे टकराती है। और ये सवाल पूछती है कि इन मुश्किल हालात में हम एक सार्थक, एक मीनिंगफुल और एक सच्चा, ऑथेंटिक जीवन कैसे जी सकते हैं।
ये बहुत रिलेटेबल लगता है। तीसरा,
ये लगातार इस सवाल से जूझती है कि आज़ादी यानी फ्रीडम आखिर है क्या, और मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। और ये दिखाती है कि हमारी ये समझ भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये इतिहास के साथ, समाज के साथ बदलती रही है।
क्या हम वाकई उतने आज़ाद हैं जितना हम सोचते हैं? ये सवाल भी उठता है इससे।
हाँ, बिल्कुल, खासकर जब हम आर्थिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फूको वाली अदृश्य ताकतों के बारे में सोचते हैं।
और चौथा पॉइंट?
चौथा, ये उस तरह की सोच, उस तरह के तर्क यानी रीजन पर सवाल उठाती है जो सिर्फ फायदे नुकसान, कुशलता, एफिशिएंसी, कैलकुलेशन और कंट्रोल की भाषा बोलता है
और इंसानी मूल्यों को भूल जाता है।
हाँ, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने इंस्ट्रूमेंटल रीजन कहा था, यानी सोच का वो तरीका जो हर चीज को, यहां तक कि इंसानों को भी, बस एक साधन, एक औजार, एक रिसोर्स की तरह देखता है। ये आज की कॉर्पोरेट दुनिया या टेक्नोलॉजी के दबदबे को देखते हुए बहुत बहुत जरूरी आलोचना है।
सही कहा। तो अगर हम इन सब विचारों को देखें तो कुछ ऐसी खास बातें या कथन हैं जो क्रिचली की किताबों से एकदम दिमाग में चिपक जाते हैं, कुछ खास नगेट्स ऑफ विजडम टाइप।
हाँ हैं। एक तो वो बुनियादी आइडिया है जो इस पूरी परंपरा के पीछे है कि कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी की जड़ में ये समस्या है कि हमारे पास जानकारी मतलब नॉलेज तो बहुत ज्यादा हो गई है,
लेकिन इस जानकारी ने हमें जीवन जीने के बारे में ज्यादा समझदार, ज्यादा वाइज नहीं बनाया है।
बिल्कुल, वो ज्ञान और विवेक की खाई वाली बात, ये इस पूरी परंपरा को ड्राइव करती है।
और वो पर्दाफाश करने वाली बात भी काफी सोचने लायक है।
हाँ, कि ये दर्शन हमें ये दिखाता है कि जिन चीजों को हम एकदम नेचुरल, हमेशा से ऐसा ही या नॉर्मल मानकर चलते हैं,
जैसे
परिवार का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या काम करने का सही तरीका क्या है, या मर्द और औरत के रिश्ते कैसे हों, यहाँ तक कि हम सोचते कैसे हैं, तर्क कैसे करते हैं, ये सब असल में इतिहास में बनी हुई चीजें हैं।
हाँ,
और अक्सर ये किसी ना किसी के फायदे के लिए, किसी ना किसी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए काम करती हैं। ये हमें सिखाता है कि जो नॉर्मल दिखता है उस पर सवाल उठाओ। सोचो, भारत में ही जाति व्यवस्था या जेंडर रोल्स को कैसे सदियों तक प्राकृतिक या भगवान का बनाया हुआ मान लिया जाता रहा है।
ये तो आंखें खुलने वाली बात है। आजादी के बारे में भी एक खास आइडिया था।
बिल्कुल, कि इस दर्शन का पूरा इतिहास एक तरह से देखा जाए तो मानव स्वतंत्रता के बदलते हुए मतलबों पर एक बहुत लंबी बहस है। हाँ, ऐसी दुनिया में जहां आर्थिक सिस्टम, टेक्नोलॉजी और वो फूको वाली ताकत की अनदेखी संरचनाएं हमें लगातार बांधती हुई सी लगती हैं, तो आजादी का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ये सवाल आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है जब हम एल्गोरिदम और डेटा की दुनिया में जी रहे हैं।
सही। और भाषा की ताकत पर क्या कहा था?
हाँ, कि भाषा सिर्फ दुनिया के बारे में बताती नहीं है, ये दुनिया में हमारे होने की, हमारे जीने की नई संभावनाएं खोलती भी है
और बंद भी कर सकती है।
बिल्कुल, हमारे शब्द सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब नहीं करते, वो हमारी सोच और हमारी हकीकत को बनाते भी हैं, घड़ते भी हैं। सोचिए कैसे मीडिया या नेता भाषा का इस्तेमाल करके हमारी राय बनाते हैं, हमें किसी चीज के बारे में एक खास तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं।
ये सब बातें सोचने में तो बहुत गहरी है, लेकिन सवाल फिर वही आता है, क्या हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी?
हाँ हाँ, जरूर है। और क्रिचली इसी पर बहुत जोर देते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है।
तो कैसे? पर्सनल लेवल पर?
पर्सनल लेवल पर सोचिए सार्त्र की बात। वो हमें याद दिलाते हैं कि देखो, हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट पर हैं। हम अपने एटीट्यूड को, अपनी पसंद को, अपनी वैल्यूज को चुन सकते हैं। हम बहाने बनाना बंद करके जिम्मेदारी ले सकते हैं।
ये एक तरह से एम्पावरिंग आइडिया है, ताकत देता है।
बिल्कुल, और समाज में या काम की जगह पर।
हाँ,
फूको की बातें हमें सिखाती हैं कि हम अपने आसपास जो पावर डायनामिक्स हैं, जो ताकत की बारीकियां हैं, उन्हें समझें। ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या समाज के अनकहे नियम हो, उनको लेकर ज्यादा जागरूक बने, अंधे ना बने।
और मार्क्स?
मार्क्स की आलोचना हमें उकसाती है कि हम उपभोक्तावाद पर, कंज्यूमर कल्चर पर सवाल उठाएं। क्या हमें वाकई इन सारी चीजों की जरूरत है, या हमें ये जरूरत महसूस कराई जा रही है विज्ञापनों से, सोशल मीडिया से? आजकल की वो इंस्टा परफेक्ट लाइफस्टाइल को देख के ये सोचना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो आज के जमाने का बहुत बड़ा सवाल है। और डेरिडा की वो भाषा वाली बात, वो कैसे काम आ सकती है?
वो हमें सिखाती है कि हम एक बेहतर रीडर और एक बेहतर लिसनर बने। जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चाहे वो न्यूज हो, नेता का भाषण हो, या फिर व्हाट्सएप पर आया कोई फॉरवर्ड मैसेज हो,
उससे आंख मूंद कर ना माने।
हाँ, थोड़ा ध्यान से देखें क्या छिपाया जा रहा है, किन शब्दों पर ज्यादा जोर है, कौन सी बात गोलमोल कही जा रही है। ये हमें एक ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा समझदार पाठक और नागरिक बनाता है। मीडिया लिटरेसी जिसे कहते हैं, उसका एक अहम हिस्सा है।
और टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ सोचने को मिलता है इन विचारों से?
बिल्कुल, हेडेगर जैसे विचारक थे, हालांकि उनके अपने विवाद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी पर जो सवाल बहुत पहले उठाए थे, वो आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगते हैं।
जैसे कि
क्या हम अपने फोन और सोशल मीडिया और ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं वो हमें तो इस्तेमाल नहीं कर रहे?
क्या टेक्नोलॉजी ने दुनिया को और इंसानों को भी सिर्फ एक संसाधन, एक यूजर, एक डेटा पॉइंट की तरह देखना शुरू कर दिया है?
ये रुककर सोचने वाली बातें हैं जरूर।
हाँ,
तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरे ज्ञान गोष्ठी से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं, मतलब सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
देखिए, मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी कोई पुरानी धूल खाती हुई किताब नहीं है जिसे म्यूजियम में रख दिया जाए।
नहीं
नहीं, ये जिंदा है और आज भी उतनी ही बल्कि शायद पहले से ज्यादा जरूरी है। ये हमें सिखाती है कि हम सवाल पूछें, चीजों को बस यूं ही एक्सेप्ट ना कर लें, सत्ता पर चाहे वो किसी भी रूप में हो उस पर सवाल उठाएं और एक ज्यादा न्याय वाली, ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी और समाज की कल्पना करें। ये हमें जगाए रखने का दर्शन है। और शायद ये भी कि फिलॉसफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करते हैं।
हाँ?
ये तो हमारे रोज के फैसलों में है, हमारे रिश्तों में है, हमारी चिंताओं में है। आजादी क्या है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, न्याय क्या है, इन सवालों के कोई रेडीमेड आसान जवाब नहीं है।
नहीं है।
शायद इन सवालों के साथ जीना, इनसे लगातार जूझते रहना, शायद यही मायने रखता है।
और सिमोन क्रिचली का कमाल मुझे यही लगता है कि वो इतने सारे अलग अलग, कभी कभी आपस में झगड़ते हुए से दिखने वाले विचारों को एक साथ लाके ये दिखाते हैं कि देखो, ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है।
कौन सी कहानी?
ये कहानी के इस उलझी हुई मुश्किल आधुनिक दुनिया में हम बेहतर इंसान और बेहतर समाज कैसे बने, वो हमें तैयार जवाब नहीं देते, पर हाँ, सोचने के लिए सही सवाल और कुछ बहुत काम के औजार जरूर देते हैं।
मेरे लिए शायद सबसे यादगार बात वही आलोचना और परिवर्तन वाली ही रहेगी। ये दर्शन हमें सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसे बेहतर बनाने की एक जिम्मेदारी भी याद दिलाता है कि भाई, चुपचाप सब कुछ सहते जाना या मान लेना, ये कोई ऑप्शन नहीं है।
और मेरे लिए शायद वो अलगाव वाली बात और वो इंस्ट्रूमेंटल रीजन वाली बात, आज की जिंदगी में हम कितनी बार बस टारगेट पूरा करने में, पैसा कमाने में, चीजें जमा करने में इतने खो जाते हैं कि अपने असली जुड़ाव भूल जाते हैं। खुद से जुड़ाव, दूसरों से, प्रकृति से। ये दर्शन हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम कर क्या रहे हैं।
तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्यों?
हाँ, जरूर।
अगर कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी हमें अपने समय की आलोचना करना सिखाती है, तो आज हमारे समाज में, हमारी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल नॉर्मल या प्राकृतिक लगती है, लेकिन जिस पर हमें इन दार्शनिकों से मिले औजारों का इस्तेमाल करके सवाल उठाना चाहिए? सोचने वाली बात है ये।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।